नमस्कार भारत, तारीख 2 जुलाई, दिन रविवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने कर चोरी करने वाली कंपनियों को चेतावनी दी, कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट न दे उनका साथ। जीएसटी तो लागू हो गया, अब असमंजस में जूझ रहे हैं व्यापारी और ग्राहक।
कुछ केसेस में प्रॉब्लम क्या आ रही है, एमआरपी 500 रुपए लिखा हुआ है, पहले 12% टैक्स लगा करके वो 400 रुपए के आइटम बिकती थी, अब वो 28% टैक्स लग जाता है तो एमआरपी से ऊपर पहुंच जाता है, 550 रुपए हो जाता है।
यूपी के बांदा में शौच जाने के बदले मजदूरी कराने के मामले।
न रहने के लिए मकान है, न शौच जाने के लिए कहीं कोई जगह है, तो ये जो हमारी बस्ती के बाहर जिनके भी खेत हैं, शर्त पर शौच जाने की अनुमति देते हैं कि आपको हमारे ही खेतों में काम करना पड़ेगा और 40 रुपए मजदूरी में काम करना पड़ेगा।
महिला विश्व कप में आज भारत का सामना होगा पाकिस्तान से, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोटबंदी के बाद हुई जांच में 3 लाख से ज़्यादा संदिग्ध कंपनियों के बारे में पता चला है और 1 लाख कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं। उन्होंने अपील की कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसी फर्जी कंपनियों को पहचानें। पीएम मोदी ने कहा है कि अवैध कामों में लिप्त 47,000 कंपनियों के खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। इधर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लागू होने के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल का कहना है कि वो राज्य में इसे लागू करने के लिए कुछ और समय के लिए अनुरोध करेंगे। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी का कहना है कि उनका देश कई अरब देशों द्वारा की गई मांगों की लिस्ट को मानने से इनकार करता है। उनका कहना है कि वो सही परिस्थितियों में बातचीत के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत कुछ अन्य खाड़ी देशों ने कतर के सामने 13 शर्तें रखी थीं, जिसे मानने की समयावधि 2 दिनों में खत्म होने वाली है। विदेश मंत्री का कहना है,
This list of demands made to be rejected. It's not made to be accepted.
मांगों की इस लिस्ट को हम अस्वीकार करते हैं, ना तो इन्हें स्वीकार किया जा सकता है और ना ही इस पर बातचीत ही की जा सकती है। कतर इन मांगों को सैद्धांतिक रूप से अस्वीकार करने की बजाय आगे की बातचीत करने के लिए तैयार है, बशर्ते सही परिस्थितियां पैदा की जाएं। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कनाडा आधिकारिक तौर पर एक आज़ाद देश बनने के 150 साल पूरे होने की खुशी मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि देश की शक्ति उसकी विविधता में है। वो एक समारोह को संबोधित कर रहे थे जिसमें प्रिंस चार्ल्स भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, हम चाहे किसी भी रंग के हों, किसी भी नस्ल के हों, हम विश्व के किसी भी कोने से हों, हम ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहे हों या यूकोन में रह रहे हों या फिर उत्तरी पश्चिमी प्रांत सास्काचिवान, मानिटोबा, नुनावोट, ओंटारियो, क्यूबेक, न्यू ब्रुंसविक, प्रिंस एडवर्ड द्वीप, नोवा स्कोटिया, न्यूफाउंडलैंड या लेब्राडोर में रह रहे हों, लेकिन हम विविधता को स्वीकार करते हैं और हम दिल से जानते हैं कि हम कनाडा के निवासी हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के शब्द। अमेरिका के कुछ राज्यों के कथित धांधली वोटर धांधली की जांच के लिए बनाए गए इलेक्शन फ्रॉड कमीशन को वोटर की जानकारी देने से मना कर दिया है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर सवाल पूछा है कि ये राज्य क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार को कमीशन ने सभी 50 अमरीकी राज्यों से पंजीकृत वोटरों के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसमें वोटरों की जन्मतिथि, पार्टी की तरफ झुकाव, सोशल सिक्योरिटी नंबर, आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारियां शामिल है। कुछ राज्यों ने वोटर की निजता को लेकर चिंता जताई थी और कहा था कि उन्हें डर है कि ये जानकारी हैक हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि यमन में हैजा फैलने के कारण 15,000 लोगों की मौत हो गई है। यमन में संगठन के दूत निवो जगारिया ने सना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हो सकता है कि देश में हैजा के लगभग 25 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हों। यमन बीते 2 महीनों से गंदगी के कारण तेजी से फैलने वाले हैजा की चपेट में है, जहाँ सऊदी नेतृत्व में गठबंधन सेना और हूथी विद्रोहियों के बीच संघर्ष चल रहा है। सेना के शस्त्र भंडार से दर्जनों रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड चोरी होने के बाद पुर्तगाली आर्मी के प्रमुख ने सेना के 5 कमांडरों को निलंबित कर दिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। 30 जून और 1 जुलाई की दरमियानी रात को जीएसटी की आमद का सरकार ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जश्न मनाया था और अगले ही दिन यानी कि जीएसटी लागू होने के बाद प्रधानमंत्री ने जीएसटी पर एक लंबा भाषण दिया और इस नई कर व्यवस्था को आर्थिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी बताया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि वो देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट से राष्ट्र निर्माण में आगे आने की अपील करते हैं। प्रधानमंत्री ने कर चोरी करने वाली कंपनियों को चेतावनी दी और कहा कि ऐसी 37,000 कंपनियों का पता लगाया गया है और 3,00,000 दूसरी कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपने क्लाइंट्स को ईमानदारी के रास्ते पर ले चलने के लिए आपको आगे बढ़कर के कमान संभालनी होगी। जब किसी कंपनी की सही ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी जाती, तथ्यों को छिपाया जाता है और बाद में जब भेद खुलता है तो वास्तव में वो कंपनी नहीं डूबती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो गरीब विधवा की जिंदगी डूब जाती है।
प्रधानमंत्री मोदी जीएसटी को ईमानदारी की मुख्य धारा में आने का मौका बता रहे हैं। हालांकि व्यापारियों में इसे लेकर थोड़ी चिंताएं हैं और डर भी है। दिल्ली के कश्मीरी गेट ऑटो बाजार में बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र पहुंचे बात करने के लिए कुछ मझोले व्यापारियों से और साथ में उन्होंने बात की एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। सबसे पहले यही पूछा कि आज की तारीख में वो जीएसटी के लिए कितने तैयार।
नहीं नहीं नहीं, आज हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। 90% व्यापारी पूरी तरह से दुविधा में है, कंफ्यूज्ड है कि करना क्या है। बिलिंग प्रोसीजर को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि कैसे बिलिंग करनी है। एक जीएसटी नेटवर्क जो वेबसाइट है वहां से बड़ी दिक्कत आ रही है। एक माइग्रेशन की दिक्कत है, अभी भी लाखों व्यापारी पूरे देश में है जिनका जीएसटी में माइग्रेशन नहीं हो पाया है।
आपने क्या रजिस्ट्रेशन कर दिया है?
नहीं, हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। बड़ी बड़ी कंपनियों को भी क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने अब जो बिल करना है तो उनका बिलिंग का क्या पैटर्न रहेगा। ये स्थिति सामान्य होने में अभी कम से कम 15 दिन लगेंगे पूर्ण रूप से।
सर, आप तो सीए हैं, कैसे ये प्रक्रिया आसान होगी कि व्यापारियों के लिए जीएसटी समझना आसान हो जाए?
सबसे ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखने की। एज ए सीए मैं कह सकता हूँ कि सवेरे से मेरे पास कई व्यापारियों के फोन आ रहे हैं कि सर बिल कैसे बनाना है। कुछ केसेस में प्रॉब्लम क्या आ रही है, 500 रुपए की आइटम है, एमआरपी 500 रुपए लिखा हुआ है, पहले 12% टैक्स लगा करके वो 400 रुपए की आइटम बिकती थी, अब वो 28% टैक्स लग जाता है तो एमआरपी से ऊपर पहुंच जाता है, 550 रुपए हो जाता है। अब 550 रुपए ऊपर हो जाता है तो एमआरपी से बेचना अपने आप में एक जुर्म है।
आपका कपड़े का व्यवसाय है, मुझे आप बताएं कि जीएसटी के बाद समस्याएं आ रही हैं आपको या नहीं आ रही?
मेरे पास एक कस्टमर आया साड़ी लेने के लिए, तो अब मैंने उनको बाहर से मना कर दिया, मैम मैं आपको सेल नहीं कर सकता, मेरे पास जीएसटी नंबर ही नहीं है और मेरे पास बिल बुक्स हैं, सब पुरानी है।
आपके जो साथी कपड़े का व्यापार करने वाले लोग हैं उनमें से अंदाजन आसपास में कितने लोगों ने जीएसटी का नंबर ले लिया है और रजिस्ट्रेशन कराया?
सर अभी तक तो किसी ने भी जीएसटी नंबर नहीं लिया है। मैक्सिमम आपको कपड़े लिखे कपड़ा व्यापार में आपको मिलेंगे, वो लोग तो बेचारे बिल्कुल ही ठप हो गए, जो एजेड है, जो बड़े लोग हैं उनको एक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर परमानेंट अकाउंटेंट।
ये फियर ऑफ अननोन है क्या, अज्ञात का डर है कि हमें अभी जीएसटी के बारे में ठीक से पता नहीं है इसलिए हम जीएसटी से डर रहे हैं?
फियर ऑफ द अननोन है। आप समझिए कि जीएसटी के अंदर में वैसे भी रिटर्न रिवाइज का कोई प्रावधान नहीं है, तो इसका माने क्या है कि जो भी कदम आप रखोगे वो पूर्ण रूप से फूक फूक कर रखें। तो सर अभी जिसमें मुझे मेरा ज्ञान ही आधा अभी है भाई, आप समझिए जीएसटी एज अ कंसेप्ट हमने बहुत उसका स्वागत किया, भविष्य उज्जवल है, पर अगर वर्तमान में मैं इतनी शंकाओं और उनमें संशय में मैं उलझा हुआ हूँ तो सर मुझे अभी स्थिति सामान्य होने में 2-4-6 महीने समय लगेगा ही लगेगा।
जो लोग जीएसटी के समर्थक हैं उनकी तरफ से ये दलील तो दी जाती है कि व्यापारियों का एक तबका इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि वो उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल में उन रिकॉर्ड्स में नहीं आना चाहता है।
ये गलत है सोच, अगर सरकार ऐसा सोच रही है कि व्यापारी इसलिए विरोध करें, व्यापारी विरोध जो वास्तविक समस्या है उनके कारण कर रहे हैं।
12.5% जब वैट था तभी इतनी कर की चोरी थी, इतना राजस्व की चोरी होती थी, तो 28% में तो आप सोचिए कि क्या नहीं होगा। और अगर जहाँ पे चोरी करेंगे कुछ दुकानदार और बाकी नहीं करेंगे तो वो उनके सामने कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। प्लस जो इंडस्ट्री अभी तक स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल की थी, जो एक्साइज के दायरे से बाहर थी, वो अब बड़ी ब्रांड्स के सामने कम्पीट कहाँ कर पाएंगे।
कुलदीप मिश्र बात कर रहे थे दिल्ली के कश्मीरी गेट ऑटो बाजार के व्यापारियों से। जीएसटी के लागू होने के बाद व्यापारियों में अभी भी असमंजस बरकरार है। पश्चिम बंगाल में जीएसटी के लागू होने को लेकर एक भ्रम की स्थिति रही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाद के दिनों में जीएसटी जिस तरह से लाया गया उसका विरोध किया। जम्मू कश्मीर वो प्रदेश है जहां जीएसटी लागू नहीं हुआ है। नई कर व्यवस्था के खिलाफ कल वहां बंद बुलाया गया था और इसी दिन अनंतनाग जिले के गांव में सुरक्षा बलों व संदिग्ध चरमपंथियों की मुठभेड़ में दो चरमपंथी मारे गए, लेकिन गोलीबारी में दो आम नागरिकों की भी मौत हो गई। आज इसके खिलाफ वहां बंद बुलाया गया है। बुरहान वानी की बरसी से कुछ दिन पहले हुई इस घटना ने वहां तनाव को और बढ़ा दिया है। हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
राज्य सरकार पहले ही दिन से इस बात का आश्वासन देती आ रही है कि जीएसटी राज्य के व्यापार तबके के हित में है और राज्य के विशेष दर्जे यानी धारा 370 पर किसी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी, इस बात का भी आश्वासन देती आ रही है। कश्मीर घाटी में अभी तक जीएसटी के खिलाफ दो बार कश्मीर के व्यापार मंडल ने कश्मीर बंद बुलाया है। जम्मू कश्मीर में अगर जीएसटी लागू नहीं किया जाता है तो इसका नतीजा क्या होगा, यही जानने की हमने कोशिश की कश्मीर यूनिवर्सिटी में अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद वानी से।
उसकी इम्प्लीकेशन ये होगी कि जेएनके स्टेट विल नॉट बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द न्यू टैक्स रिजीम और उसमें जो इनपुट क्रेडिट जो मिलना है वो यहाँ के जो बिजनेसमैन है उनको नहीं मिल सकता है। इन अदर वर्ड्स दे विल हैव टू मेक अ डबल पेमेंट।
विपक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर दूसरे राजनीतिक दल समेत सभी कश्मीर में जीएसटी को लागू करने का विरोध कर रहे हैं। जीएसटी पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति बनाने के लिए 4 जुलाई को फिर से एक बार विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। इससे पहले 17 जून को भी इस मुद्दे पर विधानसभा में सत्र बुलाया गया था। व्यापार मंडल कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के चेयरमैन मोहम्मद यासीन खान कहते हैं कि अगर उनकी जान भी जाएगी तो जीएसटी को मौजूदा शक्ल में लागू नहीं होने दिया जाएगा।
तो जो 46 अमेंडमेंट्स हुई हैं, आज 47th आप करने जा रहे हो, तो हमें कहाँ पे हमारे खदशात हैं कि आप एज इट इज फॉर्म में लगाओगे तो जो हम लगने नहीं देंगे, चाहे हमारी जाने ही क्यों न चले जाए।
अलगाववादी नेता सईद अली शाह गिलानी ने कश्मीर में व्यापार मंडल से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू करने में बहुत ही एहतियात से काम ले। राज्य सरकार के लिए जम्मू कश्मीर में जीएसटी का मामला एक ऐसे समय में विवादों के भंवर में फंस चुका है जब कश्मीर में जमीनी सत्ता पर हालात बहुत ही अशांत हैं। आने वाले कुछ दिनों में अब बीते साल मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की पहली बरसी है। बुरहान वानी को मारे जाने के बाद कश्मीर में 6 महीने तक भारत विरोधी प्रदर्शनों की लहर चली थी जिसमें करीब 100 आम नागरिक पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए थे। इस बीच आज अलगाववादियों ने कश्मीर के अनंतनाग के ब्रिंटी बटपोरा में मुठभेड़ के दौरान 2 आम नागरिकों की मौत के खिलाफ बंद बुलाया है। इस मुठभेड़ में लश्कर तैयबा का एक टॉप कमांडर बशीर लश्करी भी मारा गया था। श्रीनगर के कई इलाकों में आज आम लोगों के चलने फिरने पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
नमस्कार भारत। शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत और आज के अखबारों को पढ़ने का वक्त आ गया है। मानसी अखबार पढ़ चुकी है। मानसी, जीएसटी, काला धन, प्रधानमंत्री मोदी, यही सारी खबरें।
हर अखबार का पहला पन्ना इसी खबर पर है। प्रधानमंत्री ने कल जीएसटी लागू करने के बाद पहली बार जीएसटी पर लंबा चौड़ा भाषण दिया और उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इसके बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद देश में 3 लाख से ज़्यादा कंपनियों का हिसाब किताब संदिग्ध पाया गया है। इनमें से 1 लाख कंपनियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए गए हैं।
मतलब आंकड़ा ये है कि 3 लाख कंपनियाँ हैं जिसका काम काज संदिग्ध
मिला,
1 लाख पर ताले लटक गए और 37,000 कंपनियां हैं
अभी इनकी पहचान की गई है,
बारे में पता चला है कि ये कुछ कर चोरी के मामले में।
कठोर कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है इन 37,000 कंपनियों पर। और इधर काले धन पर भी मोदी ने कहा है कि स्विस बैंकों की जो ताजा रिपोर्ट है उसके अनुसार भारतीयों के काले धन में करीब 45% की कमी हुई है। एक खबर आपको बता दूं जनसत्ता से, भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ बिजनौर के पुलिस थाने में राजद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। और इधर एक खबर दैनिक भास्कर में, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रह रही महिलाओं के हक में एक फैसला दिया है और कहा है कि महिलाएं अपने पार्टनर से गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। अखबार के अनुसार हाईकोर्ट ने इस रिश्ते से पैदा हुई संतान को भी विवाहित दंपति की संतान की भांति गुजारा भत्ता पाने का हकदार माना है और कोर्ट का कहना है कि समाज में बदलाव आ रहा है और लिव इन रिलेशंस अब असाधारण बात नहीं है। दैनिक जागरण में छपी एक खबर के अनुसार 100 करोड़ रुपए से अधिक के सीएनजी फिटनेस घोटाले में दिल्ली के पूर्व राज्यपाल नजीब जंग के खिलाफ जांच का अब रास्ता साफ हो गया है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि जंग ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को इस मामले की जांच आगे बढ़ाने से रोका था। दी स्टेट्समैन में छपी एक खबर आपको बता दूं, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए राजनयिक पहुंच की गुजारिश की है। कुलभूषण पर पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी का आरोप लगाकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी।
इसके अलावा एक विश्लेषण की अगर मैं बात करूं तो जो दैनिक भास्कर है उसका जो शीर्ष खबर है, बल्कि आज ये कहना चाहिए कि सारे जितने भी अखबार हैं, हर कोई हर अखबार अपने अपने तरीके से जो पाठक है उनको जीएसटी के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है। भास्कर कह रहा है कि जो वो चार पेचों की बात उसने की जिससे कि घर खरीदने वाले नुकसान में रहेंगे, और इसने जो हेडलाइन लगाई है सरकार का दावा कि सस्ते होंगे घर लेकिन खरीदार घाटे में रहेंगे, तो जिस तरीके से अखबार बता रहे हैं अलग अलग तरीके से कि क्या नफा क्या नुकसान, हर तरीके से चीज़ों को बताने की कोशिश की है सारे अखबारों ने। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जीएसटी से जुड़ी जितने भी पेज हैं, यानी कि क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा, bbchindi.com पर एक पूरा का पूरा पेज है जिसे कि पढ़ने के लिए आप आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी। अब कार्यक्रम में एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हांगकांग पहुंचने के बाद इस क्षेत्र पर चीनी प्रभुत्व को चुनौती देने वाली कोशिशों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। जिनपिंग हांगकांग की नई कार्यकारी अधिकारी कैरी लेम के शपथ ग्रहण समारोह में हांगकांग पहुंचे थे। पूरा ब्यौरा सुनिए मानसी दास से।
20 साल पहले 1 जुलाई को ब्रितानी हुकूमत ने हांगकांग को चीन के हवाले कर दिया था। हांगकांग इस हस्तांतरण की 20वीं सालगिरह मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, मैं हांगकांग में वन कंट्री टू सिस्टम कार्यक्रम को बेहतर तरीके से लागू करने की बात करता हूं। पहले तो ये जरूरी है कि हम वन कंट्री टू सिस्टम संबंध को समझें। रोजमर्रा के काम करते वक्त हम में एक देश का हिस्सा होने की मजबूत भावना होनी चाहिए। चीनी संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने, केंद्रीय सरकार की शक्तियों को चुनौती देने, हांगकांग से घुसपैठ करने और चीन की धरती के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश करना पूरी तरह मना है। ऐसी कोशिशें अपनी सीमा रेखा पार करने वाली गतिविधियां हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शब्द। हालांकि हांगकांग में वन कंट्री टू सिस्टम कार्यक्रम के तहत यहां का कानून नागरिकों को कई तरह की आज़ादी देता है, लेकिन सभी वयस्कों को राजनीतिक मताधिकार के इस्तेमाल की आज़ादी देने के मुद्दे पर चीन के इनकार से कई बार हिंसक प्रदर्शन हो चुके हैं। इस बार भी राष्ट्रपति की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन हुए और पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें भी हुई। एक प्रदर्शनकारी आउ नोक हिन के अनुसार, इस साल हमारा थीम है कि वन कंट्री टू सिस्टम का वायदा टूट चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि गणतांत्रिक तरीके से शासन, मेरा मतलब है कि हमें स्वायत्तता का आनंद मिलना चाहिए, और यही वो संदेश है जो हम इस वर्ष राष्ट्रपति शी जिनपिंग को देना चाहते हैं। हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थक सालों से इस बात के लिए अभियान चलाते आ रहे हैं कि यहां के लोगों को अपना नेता चुनने का अधिकार मिले। 2014 में चीन ने कहा था कि वो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के सीधे चुनाव की इजाजत देगा, लेकिन केवल पहले से अधिकृत उम्मीदवारों की सूची से ही उनका चुनाव होगा। लेकिन पूरी तरह लोकतंत्र चाहने वालों की ओर से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने के बाद चीन ने अपने इस कदम को वापस ले लिया था।
कार्यक्रम में अब चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की, जहां शौच जाने के बदले मजदूरी कराने यानी कि टैक्स लेने का एक मामला सामने आया है। हालांकि मामला कोई नया नहीं है, लेकिन प्रशासन और कथित तौर पर टैक्स लेने वाले आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र बांदा जिले के इस गाँव में पहुंचे और उन्होंने वहां से हमें ये रिपोर्ट भेजी है।
किसी के खेतों में हम लोग जाते हैं शौच करने के लिए, वो लोग जाने नहीं देते। बताइए हम लोग कहाँ जाएं गरीब आदमी शौच करने के लिए, कोई जगह ही नहीं है। वो लोग कहते कि भाई हम लोग के यहाँ शौच करोगे तो हम लोगों की मजदूरी करोगे। अब बताओ अगर
अतर्रा तहसील में जरूहा चौकी गांव की रहने वाली सैरू निशा घर में शौचालय न होने का दर्द कुछ इस तरह बयां कर रही हैं। ये दर्द सिर्फ सैरू निशा का ही नहीं था बल्कि वहाँ इकट्ठा हुई करीब दर्जन भर महिलाओं का था।
शौच के लिए इतनी परेशानी है कि शौच के लिए अगर जाओ तो कहते हैं खेत वाले हमारे मेहनत करो, मजदूरी करो, हमारे गल्ला भूसा डालो, तब जाओ कंधा पातो तब जाओ, नहीं तो हमारे खेतों में ना जाओ।
तो हम लोग करते हैं चोरी छुपे जाते हैं,
ट्रेन के
मजदूरी में जाना पड़ता है,
खड़े रहते हैं,
पैसा एक नया नहीं देते,
ना काम करवाते हैं, उसके बदले में कोई मजदूरी नहीं देते हैं, चाहे कंडा पथवाए या भूसा डलवाए या मट्टी डलवाए, उसके बदले में कोई भी मजदूरी नहीं देते हैं। मजबूरी से उनकी मजदूरी करना ही पड़ती है,
क्या करें, जब शौचालय नहीं है तो जाना पड़ता है, हमको करना पड़ता है, क्या करें।
ये कहते हैं कि अगर यहाँ शौचालय यहाँ करने आओगी तुम लोग लैट्रिन तो हम लोग फिर बेकार करना पड़ेगा, लगा रो खेत में के उनके गल्ला पानी ढो, भूसा ढो, मजूरी कर, उनके साथ जाओ डालने उनके घर फ्री में।
मिट्टी के बने छोटे छोटे घरों में शौचालय की गुंजाइश तो थी ही नहीं, इतने घरों के लिए आज तक एक भी सामूहिक या सामुदायिक शौचालय भी नहीं बन सका है। बांदा जिले का ये गांव अतर्रा ग्रामीण नाम की ग्राम पंचायत के तहत आता है। इसके दूसरी ओर एक और गांव है भुजवनपुरवा। वहां की दलित बस्ती में भी करीब 3 दर्जन घर ऐसे हैं जहां शौचालय जैसी किसी जगह की बात करना ही बेमानी है। इसी बस्ती में रहने वाले भैया लाल कहते हैं
यहाँ हर जन करीबन 30-35 घर से आदमी है।
यहाँ किसी के पास शौचालय नहीं है?
किसी के पास नहीं, 2-4 जने का आवास मिले हैं, बाकी को होगा नहीं मिले,
सब कच्चे घर में रह रहे हैं।
कच्चे घर में नहीं है, झोपड़ पट्टी में।
शौच के लिए बाहर जाने को मजबूर इन भूमिहीनों का भी दर्द कुछ ऐसा ही था जैसा कि जरूहा चौकी गांव के लोगों का।
हाँ मजदूरी हमसे जबरदस्ती नहीं कराते हैं, मजदूरी अब हमारे खा पिए करने हैं तो फिर हम भैया जो कहो जाई तक करबे तो है काम, तब जाऊँ तो जे हाँ ना शौचालय है ना यहाँ कोई किसी की जमीन है, ऐसे सब चमान मतलब कमात खाती।
उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के कई जिलों को सितंबर महीने तक प्रशासन शौच मुक्त जिला यानी ODF घोषित करने की तैयारी कर रहा है। बांदा जिला भी उनमें से एक है और ऊपर जिन गांवों का उल्लेख हुआ है वो इसी बांदा जिले में आते हैं। अतर्रा के SDM अवधेश श्रीवास्तव ये तो मानते हैं कि इन बस्तियों में कोई भी शौचालय नहीं है, लेकिन शौच के बदले मजदूरी या टैक्स की बात को वो सिरे से नकारते हैं।
तो तथ्य बता रहे हैं, तथ्य सही नहीं पाए गए वहाँ पर, इस तरीके की कोई बात नहीं थी एक्चुअली, वहाँ पे इसका एक आवंटन हुआ था जिसमें कब्जा नहीं हुए थे, जिसको लेकर तो लोगों ने आपको था, और शौचालय के लिए जो है शौचालय तो नहीं वहाँ पे शौचालय के गाँव में सरकारी शौचालय नहीं बने हुए थे, इसलिए उनके घर में व्यक्ति का शौचालय फलत थे, तो उसके लिए एक जमीन चिन्हित करके जो है वीडियो को बता दिया गया,
लेकिन गांव में शौचालय के एवज में मजदूरी कराने की बात करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी। यही नहीं, गांव और वहां रहने वालों की हालत देखकर भी इसे बखूबी समझा जा सकता है। इलाके के समाजसेवी राजा भैया कहते हैं
मैं उस गांव में गया था, वहां लोगों से मिला था, जिन लोगों से बातचीत हुई थी उन लोगों ने मुझे ये बात बताई थी कि ये हमारी बस्ती है जहाँ हमारे न रहने के लिए मकान है न शौच जाने के लिए कहीं कोई जगह है, और जब हमको शौच जाना पड़ता है तो ये जो हमारी बस्ती के बाहर जिनके भी खेत हैं वो बड़े लोगों के खेत हैं, और उनके यहाँ अगर हम शौच के लिए जाते हैं तो इस शर्त पर शौच जाने की अनुमति देते हैं कि आपको हमारे ही खेतों में काम करना पड़ेगा और 40 रुपये मजदूरी में काम करना पड़ेगा।
जमीन के उन मालिकों से भी बात करने की कोशिश की गई जिनके यहाँ ये लोग काम करते हैं और जिनके लिए कहा जा रहा है कि यही लोग शौच के बदले टैक्स लेते हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार करना तो दूर, उन लोगों को तो इस पर बात करना भी मंजूर नहीं था। समीर आत्मज मिश्र, BBC, अतर्रा, बांदा।
कार्यक्रम में अब बात करते हैं खेल की। भारतीय क्रिकेट के लिए आज 2 मुकाबले हैं। महिला विश्व कप में आज भारतीय टीम पाकिस्तान से भिड़ेगी, वहीं भारत वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का 4th मैच खेला जाएगा। खेल समाचारों के साथ आदेश कुमार गुप्त।
भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज 5 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज का 4th मैच एंटीगा में खेला जाएगा। पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद विराट कोहली की कप्तानी में खेलते हुए भारत ने दूसरे और तीसरे मैच में आसानी से जीत हासिल करते हुए पहले ही सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की हुई है, और आज भारत तीसरी जीत के साथ ही सीरीज भी अपने नाम करने के उद्देश्य से ही मैदान में उतरेगा। भारत ने दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्ट इंडीज को 105 रन से मात दी थी। थी, तब भारत की जीत में अजिंक्य रहाणे ने 103, शिखर धवन ने 63 और खुद कप्तान विराट कोहली ने 87 रन बनाकर जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई। तीसरे एक दिवसीय मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 93 रन से हराया। अजिंक्य रहाणे एक बार फिर चमके और उन्होंने 72 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने भी नाबाद 78 रन बनाकर अपना जलवा दिखाया, लेकिन इसके बाद स्पिनर कुलदीप यादव और आर अश्विन ने तो वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की नाक में ही दम कर दिया। कुलदीप यादव ने 41 रन देकर 3 और आर अश्विन ने भी केवल 28 रन देकर 3 विकेट झटके। कुलदीप यादव ने तो इससे पहले मैच में भी 50 रन देकर 3 विकेट झटके थे। उधर आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज तीसरे दौर में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना पाकिस्तान से, इंग्लैंड का सामना श्रीलंका से, ऑस्ट्रेलिया का सामना न्यूजीलैंड से और दक्षिण अफ्रीका का सामना वेस्टइंडीज से होगा। भारतीय महिला टीम अभी तक बेहद दमदार खेल दिखाने में कामयाब रही है और उसने पहले मैच में इंग्लैंड को 35 रन से और दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी महिला टीम पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका से 3 विकेट से और दूसरे मैच में इंग्लैंड से डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 107 रन से हारी। स्मृति मंधाना, पूनम राउत और कप्तान मिताली राज की शानदार बल्लेबाजी से सजी भारतीय टीम से पार पाना पाकिस्तानी टीम के लिए टेढ़ी खीर जैसा ही है।
जैसा कि आपने सुना, आज महिला विश्व कप में भारत का सामना पाकिस्तान से है। मैच को लेकर भारत के खेमे में क्या चल रहा है, भारत की तैयारी कैसी है, बीबीसी उर्दू संवाददाता इरम अब्बासी ने बात की भारतीय कप्तान मिताली राज से।
सबसे पहले मिताली ये बताइए कि पाकिस्तान के साथ आपका मैच है, तो पाकिस्तान इंडिया का मैच पे हमेशा प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, तो आप और आपकी टीम इसको किस तरह ले रहे हैं?
यूजुअली ऐसा होता ही है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत ही बड़ा एक्सपेक्टेशंस के साथ काफ़ी लोग देखना चाहेंगे और वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वुमेंस के मैचेस इंटरेस्टिंग रहें, और मेरे टीम के लिए तो ये एक और मैच है जो हमको जीतना है और आगे टूर्नामेंट में बढ़ना है, ना कि ऐसे एक पाकिस्तान टीम में है इनको कैसे भी हराना है बिकॉज जो भी पास्ट में हुआ, लेकिन ये वर्ल्ड कप है और पाकिस्तान भी यहाँ पे कम्पीट करने आई है, अच्छी टीम है, और एज ए इंडियन कैप्टन मैं यही बोलूँगी मेरे प्लेयर्स को कि उनको एक टीम की तरह देखें और परफॉर्म अच्छा करें ताकि हमको टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है।
पाकिस्तान अपनी दोनों पहले जो मैचेस हैं जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ हारा है, आपने वेस्ट इंडीज़ को 7 विकेट से हराया, इंग्लैंड को उसके होम ग्राउंड में हराया, तो आपको लगता है कि आपको इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट?
दो मैच इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी रही हैं, पर टूर्नामेंट बहुत ही इंटेंस और कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि बाकी के मैचेस में भी हमने देखा श्रीलंका जैसे टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ इतना अच्छा खेला है, तो कोई भी टीम को हम इजी नहीं ले सकते। हाँ, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, दो मैचेस जीते हैं तो उस कॉन्फिडेंस के साथ हम कल के मैच में ही जाएंगे, पर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है कि जिस दिन एक अच्छा टीम परफॉर्म करता है, जो अच्छा क्रिकेट खेलता है, वही टीम जीतती है।
आपने खुद कहा कि इंडियन टीम की जो है फील्डिंग और कैच पकड़ने पर काम करना चाहिए, तो इस हवाले से आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग या कुछ सेशंस टीम के लिए रखवाए?
टीम के साथ तो फील्डिंग कोच ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारी हर एक ट्रेनिंग सेशन में फील्डिंग सेशन ज़रूर होती है, और टीम बहुत ही अच्छा कर रही है, पर हाँ कैचेस में बहुत वर्क करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें अच्छे टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ मैचेस जीतना है या अच्छा क्रिकेट खेलना है, तो ये कैचेस लेना बहुत ज़रूरी है, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी फील्डिंग जो पिछले मैचेस से बेहतरीन हो।
भारत और पाकिस्तान की टीम आज महिला विश्व कप के मैच में खेलेंगी, आमने सामने होंगी, और इससे पहले कि हम आपसे कार्यक्रम में विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोटबंदी के बाद हुई जांच में 3 लाख से ज्यादा संदिग्ध कंपनियों के बारे में पता चला है और 1 लाख कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपील की कि वो फर्जी कंपनियों को पहचाने। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी का कहना है कि उनका देश कई अरब देशों द्वारा की गई मांगों की लिस्ट को मानने से इनकार करता है। کناڈا آدھیکارک طور پر ایک آزاد دیش بننے کے 150 سال پورے ہونے کی خوشی منا رہا ہے. اس افسر پر پردھان منتری جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ دیش کی شکتی اس کی وویدھتا میں ہے. امریکہ کے کچھ راجیوں نے ووٹنگ میں کتھت دھاندلی کی جانچ کے لیے بنائے گئے الیکشن فراڈ کمیشن کو ووٹر کی جانکاری دینے سے منع کر دیا ہے. اس پر امریکی راشٹرپتی نے ٹویٹ کر سوال پوچھا ہے کہ یہ راجیہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. بی بی سی سماچار.
تو بی بی سی ہندی سیوا کی پہلی سبھا نمسکار بھارت کے اس انک میں بس اتنا ہی. آج اسٹوڈیو سنبھال رہے تھے شاکر عالم. شام کو 7:30 بجے دن بھر کارکرم لے کر ہم پھر سے اپستھت ہوں گے. تب تک موہن لال شرما کو ودا دیں. نمسکار.